ओम शांति। आज का बहुत सुंदर विषय है कारणों का निवारण और समस्या समाधान। अभी की बाबा की सभी ने मुरली सुनी होगी। नए वर्ष के लिए बाबा ने कहा कि इस वर्ष में बाबा चाहता है, एक शब्द बाबा ने कहा कि बाप को अच्छा नहीं लगता, वो कौन सा शब्द? कारण। क्योंकि जहां कारण है वहां निगेटिव है। इसके कारण ऐसा हुआ, इसके कारण ऐसा हुआ, और जहां कारण है वहां समस्या है। जहां समस्या है निगेटिव विचार, निगेटिव भावना, माया के प्रवेशता का गेट। इसीलिए बाबा ने के कारण का क्या करो, निवारण, समस्याओं का समाधान। कारण को, शब्द को क्या करो, समाप्त कर दो। क्योंकि बाबा चाहता है कि हर बच्चा संपन्न बने। पिछले सीजन ग्रुप की मुरली और ये मुरली का कनेक्शन, पिछले ग्रुप की मुरली थी ब्राह्मण तो बने हैं, लेकिन आप ब्राह्मण से क्या बनो, फरिश्ता। क्योंकि फरिश्ता से फिर क्या बनेंगे, देवता। लेकिन फरिश्ता भी वही बन सकता है जो पक्का ब्राह्मण है। पक्का ब्राह्मण एक तो होते हैं पक्के ब्राह्मण, दूसरा होता है कच्चे ब्राह्मण। कच्चे मतलब जो ईश्वरीय नियम और मर्यादा प्रमाण नहीं चलते हैं, और पक्के उसको कहेंगे जो ईश्वरीय नियम और मर्यादा में चलते हैं, पक्के ब्राह्मण। कच्चे ब्राह्मण जाएंगे त्रेता युग में, पक्के ब्राह्मण जाएंगे सतयुग में। इसलिए जो पक्का ब्राह्मण बनेगा वही फरिश्ता बन सकता है, और फरिश्ता से क्या बनेगा, देवता। तो फरिश्ता बनने के लिए हमें कहीं किनारा करने की जरूरत नहीं है, हमें किसी लोगों से किनारा नहीं करना, सेवाओं से किनारा नहीं करना है। सबके बीच में रह करके भी हल्के रहना। जो ड्यूटी मिली है, कोई यहां से ग्रस्त में रहता है, अपने गांव में रहता है, तो जिस गली में रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, जिस जो नौकरी करते हैं, जिन बच्चों के साथ रहते हैं, जिस पति के साथ रहते हैं, उन्हीं जगह पर रहना है, उनसे किनारा नहीं करना। किनारा करेंगे तो और ही प्रॉब्लम बढ़ेंगे और दूसरे प्रॉब्लम आएंगे, उसे भी ज्यादा आएंगे। तो वही रह करके क्या करना है, हल्के रहना। इसको कौन हल्का रह सकता है, जो कारण का निवारण, जो समस्याओं का समाधान करेगा। अगर अंदर कारण है तो फिर एडजस्ट नहीं करेगा। इसलिए समस्याओं का समाधान, कारण का क्या करना है, निवारण। क्योंकि फरिश्ता बनना, फरिश्ता जो कारण शब्द लगाता है वो अंतर्मुखी नहीं बन सकता। वो मेरा चिंतन पर चिंतन करेगा, वायुमंडल को खराब करेगा। वो आत्मस्मृति में भी नहीं रह सकता, क्योंकि आत्मिक स्मृति में रहने के लिए चिंतन पॉजिटिव चाहिए। कारण मतलब चिंतन निगेटिव। वो सोमान में भी नहीं टिक सकता, सोधर्म में भी नहीं रह सकता। इसलिए कारणों का निवारण करो। हमें बदलना है, औरों को नहीं। जो औरों को बदलने के लिए लगता है वो फिर कारण लगाता है। जितना कारण के पीछे जाएंगे उतना समस्या बढ़ेगी। इससे फिर हम फरिश्ता स्थिति से दूर रहेंगे। इतना ही नहीं, हम योग युक्त भी में नहीं रह सकते, ना कर्म योगी ना बैठक। फरिश्ता अर्थात रात को सोया है तो भी योग बाबा से लगा हुआ है, रास्ते में चल रहा है तो भी योग लग रहा है। कारण शब्द वाला रास्ते में चल रहे तो भी कारण के बारे में सोचेगा, रात को सोए हैं तो भी कारण के बारे में सोचेगा, समस्या के बारे में सोचेगा। कर्मों में भी योग नहीं, चलते फिरते भी योग नहीं, उसका टाइम वेस्ट होता जाएगा। वो कहेगा कि मुझे पुरुषार्थ के लिए टाइम ही नहीं मिलता, उसका टाइम कहां जा रहा है? कारणों में जा रहा है। इसलिए बाबा कहते हैं इस वर्ष में कारण को क्या करो, निवारण में बदल दो, समस्याओं का समाधान करो, तब फरिश्ता बनेंगे। फरिश्ता अर्थात जिसको अति इंद्रिय सुख मिल रहे हैं। वैसे तो अव्यक्त मास भी चल रहा है, अभी 18 जनवरी आ रहे हैं, तो 18 जनवरी हमें क्या याद दिलाते हैं? बाबा के समान बनना है, बाप समान बनना है, बाबा के समान हल्के बनना है, अब घर जाना है, संपन्न बनना है। तो जितना यहां हल्का रहेगा, वास्तव में ब्रह्मा कुमारी से एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है और इसकी डिग्री है फरिश्ता, फरिश्ता है डिग्री, देवता है नौकरी। जिसके पास डिग्री होगी उसको ही नौकरी मिलेगी, लेकिन ये डिग्री किसको मिलेगी? जो हल्के रहेंगे। इसलिए हमें हल्के रहना है, कारणों का निवारण करना है, समस्याओं का समाधान करना है। वैसे तो बाबा ने कल परसों की मुरली में तो कहा, अगर आप मुरली को अच्छी तरह पढ़ते हैं, पढ़ाई जिसकी अच्छी तरह है, जो नॉलेजफुल है, उसको प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं है, उसके जीवन में कोई कारण भी नहीं होगा, समस्या भी नहीं होगी, वो बेफिक्र बादशाह होगा। अगर कारण है, इसकी मतलब पढ़ाई वो नॉलेजफुल स्थिति नहीं है। इसलिए ज्ञान के अंदर ही जो असली जवाब हमें मुरलियों के अंदर मिलता है, बाकी अगर किसी को पूछेंगे वो जवाब देंगे तो वो कोई रियली होगा ऐसी नहीं है, रियली जवाब मुरली में। इसलिए कारण वही लगाता है जिसकी पढ़ाई के ऊपर ध्यान नहीं है। इसलिए फरिश्ता स्थिति बनाने के लिए हमें हल्के रहना है, कारणों का निवारण करना है, समस्याओं का समाधान करना है। तब जो देवताओं के संस्कार है वो फरिश्ता स्थिति में आते हैं। यहां रहते हो भी उपराम, देवी देवता जो देवताएं होते हैं वो महलों में रहते हैं, इसीलिए खुश नहीं है, उनको वो आत्मिक स्थिति बनाई है उन्होंने, फरिश्ता स्थिति बनाई है, इसीलिए उनको वो शरीर में अति इंद्रिय सुख जिसको कहते हैं वो मिल रहे हैं, इसलिए वो सोने चांदी से प्रभावित नहीं है, किसी की सुंदरता के तरफ प्रभावित नहीं होते। तो ऐसे ही इस शरीर में रहते हुए भी हमें साधनों के प्रभाव से, व्यक्ति के प्रभाव से अगर मुक्त बनना है, ये फरिश्ता स्थिति का अनुभव, आत्म सुख का अनुभव करना है। कारण, वास्तव में कारण कौन लगाता है, किसके जीवन में कारण आता है? जिसके अंदर ईगो है, अभिमान है, अभिमान वाला व्यक्ति, कोई पोजीशन का है, कोई पोस्ट है, कोई विशेषता है, कोई कला है, वो व्यक्ति के जीवन में कारण बहुत होंगे, क्योंकि जो परिस्थिति आते वो उसको स्वीकार नहीं करेगा। और जिसके अंदर अभिमान है, अभिमान वाला कभी फिर फरिश्ता नहीं बन सकता। इसलिए पिछले मुरली में भी बाबा ने इसके ऊपर अटेंशन दिलाया था, फरिश्ता स्थिति बनाने के लिए विघ्न रूप में है अभिमान, इसलिए निरहंकारी बनो। जितना निरहंकारी वो समाधान स्वरूप में रहेगा, निरहंकारी वालों को कोई भी प्रकार का कारण नहीं लगाएगा, अरे जाने दो, छोड़ दो, कोई बात नहीं, ये कहेगा। इसीलिए चेक करना है कहीं हमारे अंदर अभिमान तो नहीं है। अभी गीत बज रहा था, गीत के अंदर बहुत सुंदर एक लाइन थी, सब सौंप दो प्रभु को, प्यारे प्रभु को सारे सौंप दो। इसलिए हमें अभिमान से मुक्त बनना है। तो हमारे अंदर अभिमान है या नहीं, उसकी निशानी क्या है? अपमान की फीलिंग होगी, किसी ने सम्मान नहीं दिया, किसी ने नहीं पूछा, अरे मैं तो इतना ये हूं, मेरे पास ये विशेषता है, तो वो फिर कारण लगाएगा, मेरे जीवन में ये कारण है, मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है, मेरी ये समस्या है। इसलिए निरहंकार। वैसे तो ब्रह्मा बाबा ने शरीर छूटने से पूर्व 3 मंत्र देके गए थे। बाबा ने कहा कि बच्चे निराकारी बनो, निर्विकारी बनो, निरहंकारी बनो, इससे हम लाइट रह सकेंगे, हल्का रह सकेंगे। निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। क्योंकि अभिमान जैसे ज्ञान में चलेंगे, जैसा सेवा करेंगे, अभिमान और बढ़ता जाएगा, कम नहीं होगा। जितना आगे बढ़ेंगे उतना अभिमान आएगा, लेकिन इस अभिमान को परखना बहुत जरूरी है। हम कितनी सेवा की है, कितनी ज्यादा की है, वो मतों का नहीं है। जैसे महाभारत में दिखाते हैं, अर्जुन तो बहुत कृष्ण का तो सखा था, लाडला था, तो भी लास्ट में उसने बहुत अक्षुणी सेना को मारा और सबसे नंबर 1 धनुर्धर था, लेकिन फिर भी अंत में फेल की लिस्ट में आया है, फेल। वो फेल हो गया, अभिमान आ गया कि मैंने तीर चलाया, मैंने ये किया। न चाहे भीम भी, भीम के अंदर इतनी ताकत थी, तो भी अभिमान के लिस्ट में आया। सहदेव सहयोग किया उसने, लेकिन तो भी सहयोग का अभिमान आया, इसलिए वो भी फेल के लिस्ट में आया। नकुल भी फेल के लिस्ट में आया। देखो अभिमान ने क्या क्या पराजय किया उनको। इसी तरह बाबा कहते हैं, कोई सेवा का, कोई विशेषता का, कोई गुण का कभी भी अभिमान ना है। अगर अभिमान है तो आपस में टकराव है, उसके जीवन में समस्या है, उसके जीवन में अनेक कारण होंगे। एक कारण को निकाल तो दूसरा आएगा, दूसरा निकालो को तीसरा आएगा, समस्या ही समस्या। उसको लगता है मेरे जैसी समस्या किसी को भी नहीं है, मेरे जैसे प्रॉब्लम किसी को भी है, लेकिन प्रॉब्लम किसके कारण आ रहे हैं ये वो नहीं पहचानता, वो दूसरे के ऊपर लगाता है, लेकिन खुद के अभिमान के कारण अभिमान है। इसीलिए उसको, इसीलिए अपने अभिमान को क्या करना है, खत्म करना है। आज हमारे पास जितनी विशेषता है, हमारे पास जो भी कला है, हमारे पास जो कुछ है, ये सब बाबा की देन है, हमारा कुछ भी नहीं है, ये सब बाबा के कारण है। जैसे एक के साथ 0 लगाओ तो उसकी वैल्यू बढ़ जाते है, उसके साथ और 0 लगाओ तो वैल्यू बढ़ जाते हैं। इसी तरह हमारे साथ में बाबा है, इसीलिए हमारी कीमत है, इसीलिए हमारी वैल्यू है। बाबा कराने वाला करा रहा है। जैसे कठपुतली को नचाते हैं, नचाले वाला दिखाई नहीं पड़ता, वो पर्दे के पीछे होता है, लेकिन कठपुतली क्या होते हैं, डांस करती है, पपेट शो जिसको बोलते हैं। जब उसका डांस देख करके किसी को अच्छा लगता है, अगर कोई ताली बजाए तो उस समय कठपुतली को लगे वाह मेरा डांस देकर के तालियां बजा रहे हैं। तो अगर उसको अभिमान आए तो खींचने वाला कहेगा अच्छा कर ले तुम, आगे चल तुम ही कर ले, वो खींचेगा ही नहीं, ऊपर से पर्दे के पीछे से वही लटक जाएगी। इसी तरह पर्दे के पीछे बाबा बैठा है और वहां से बाबा क्या कर रहे हैं, हम सभी कठपुतली हैं, वो सेवा कराने वाला वो है, हम तो कुछ नहीं करते। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे अभिमान कभी भी ना आए, और जो अभिमान में आता है फिर उसके जीवन में समस्या है, प्रॉब्लम है। वैसे तो दुनिया में भी आजकल अभिमान बढ़ता जा रहा है, उसका एक सूक्ष्म कारण यह है क्योंकि आजकल दुनिया में जो स्कूल कॉलेज में जो बच्चों को पढ़ाया जाता है उसके अंदर आजकल हर स्कूलों में आईक्यू ज्यादा डेवलप की जा रहा है। आईक्यू, आईक्यू मीन्स इंटेलिजेंट क्वेश्चन, बौद्धिक क्षमता। और इसलिए आईक्यू डेवलप करके सारे बच्चों को अपने स्कूल में एडमिशन लेने के लिए प्रभावित करते हैं, बोर्ड भी लगाते हैं, एडवर्टाइज लगाते हैं, हमारे स्कूल में इतना रिजल्ट लगा। अब जिसकी आईक्यू ज्यादा है उसके अंदर ईगो आता है, अभिमान आता है। इसलिए स्टूडेंट लाइफ में जिसने और जो आईक्यू डेवलप की वो पूरा लाइफ में हमेशा ईगो में ही रहता है, अरे मैं इतना होशियार था तो भी मेरे को सब किसी ने पूछा ही नहीं। इतना ही नहीं, उसको नौकरी लगने के बाद भी, क्योंकि आईक्यू लेवल से नौकरी लगती है, नौकरी लगेगा तो वह हमेशा टेंशन में रहेगा। इसीलिए स्टूडेंट लाइफ में विद्या आने के बाद क्या आनी चाहिए, विनम्रता। जैसे टेबल के चार पांव होते हैं, अगर एक ही पांव है तो टेबल हिल जाता है, अगर टेबल के चार पांव है तो स्थिर रहेगा। इसी तरह अगर स्टूडेंट लाइफ में आईक्यू के साथ ईक्यू, इमोशनल, एमक्यू, मॉरल, एसक्यू, स्पिरिचुअल, अगर ये चार बातें डेवलप होगी तो उसके अंदर विनम्रता आएगी। इसी तरह इस ज्ञान मार्ग में भी अगर हमें विनम्र बनना है तो हमारे में चारों सब्जेक्ट में बैलेंस चाहिए, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। जिसका केवल एक सब्जेक्ट में वो मास्टर है, हो सकता है उसको ईगो डेवलप हो जाएगा। इसलिए चारों सब्जेक्ट में समान ज्ञान भी चाहिए, योग भी चाहिए, धारणा भी चाहिए, सेवाई भी चाहिए, तब हमारे अंदर विनम्रता आएगी। इसलिए कहते विद्या विनयन शोभते, और जो विनम्र है उसके जीवन में कोई कारण नहीं है, उसके जीवन में कोई समस्या नहीं है, वो समाधान स्वरूप में रहेगा, वो सदा संतुष्ट प्रसन्नचित रहेगा, वो सम्मान में रहेगा, हल्का रहेगा, बेफिक्र रहेगा। इसलिए अपने चारों सब्जेक्ट पर रोज ध्यान देना है, केवल सेवाई सेवाई नहीं करनी है। सेवाई करेंगे, योगी नहीं है तो क्या हो जाएगा, फिर सेवा को मैं करता हूं, मैं करके आएगा। इसीलिए बाबा कहते चारों सब्जेक्ट को समान बना दो, अभिमान से दूर रहना है, और जितना अभिमान से दूर रहेंगे उतना कारण का क्या हो जाएगा, निवारण, समस्याओं का समाधान। और सदा कोई भी कार्य करता है तो क्या समझना है, बाबा ने कराया, बाबा कराता है। कभी कभी मैं अपने लौकिक, मेरा खुद का ही देखता हूं, हम लौकिक में तो पढ़ाई बहुत कम की है, 5 क्लास पढ़ाई किया, उसके बाद इतना ही नहीं, पढ़ने के लिए हमारे पास डायरी पेन भी नहीं रहती थी, हम लोग रद्दी से डायरी ला करके पानी से धुलाई करके फिर लिखते थे, इसी के लौकिक में पढ़ाई किया। और उसी रद्दी में एक बार बाबा का किताब मिला, और किताब मिला, ज्ञान में आए, हिंदी भाषा भी नहीं जानते थे, ज्ञान में आए, ज्ञान में योग करते 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 सेवा में समर्पित हो गए। अब समर्पित के लिए भी बहने मना कर रही थी, बोले तुम तो वहां जाकर क्या करोगे, तुम तो भाषा भी नहीं जानते, तुम इतना वो कुछ कर भी नहीं सकते, कोई कला भी नहीं थी। लेकिन मैंने कहा बहन जी, मैं जहां भी जाऊंगा ना दिल से सेवा करूंगा, बस मुझे कोई भी सेवा दे दे। तो मैं आया मधुवन में, पांडवन में ऊपर रहा पहले, तो ज्ञान विज्ञान भवन में, वहां जो आवास निवास में मुझे सेवा मिली थी, वो 2-3 गदीले ऊपर सिर पर रख करके कुंज भवन में ऊपर जाकर के सुखाना, फिर ये करना, अपना दिल से सेवा करते रहे, करते करते फिर दिल्ली में चला गया। दिल्ली में 10 साल रहा, हिंदी भाषा सीखा, कुछ ये किचन का खाना बनाना सीखा, वहां से फिर यहाँ शांतिवन में आए, शांतिवन में बड़े भंडारे में सेवा का मौका मिला। वो सेवा करते करते धीरे धीरे बोर्ड लिखते थे, बहुत सुंदर राइटिंग में, वो करते करते कुछ जब फ्री रहते थे स्कूलों में सेवा करना शुरू किया, करते करते फिर स्कूल में, करते करते जेल में, करते करते आज तक 2010 में 11 में करीबन 800-900 जेलों में कार्यक्रम किया, 9000 स्कूल कॉलेज में, जिसके कारण इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड। तो कभी मैं सोचता होगा हम पहले क्या थे और ये सब किसने दिया। बाबा हर आत्मा को अपना भाग्य बनाने के लिए क्या करता है, कोई ना कोई कला दे देता है। तो ये मेरा भाग्य बनाने के लिए बाबा ने दी हुई कला है, ये मेरी नहीं है। अगर मैं कहूँ कि वाह मैं तो बहुत अच्छे लेक्चर करना हो गया, मैंने इतना सारा कॉलेज में लेक्चर करके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया, तो देखो मैं एसी में जाऊंगा, फिर वो मेरे को इसने पूछा ही नहीं, अगर इसमें जाऊंगा तो फिर। तो इसलिए नहीं, ये सब बाबा ने कला दी है। इसीलिए सदा बाबा बाबा करते रहेंगे तो कारण का निवारण, समस्याओं का समाधान। इसलिए कभी भी महिमा को स्वीकार नहीं करना, जो महिमा को स्वीकार करता है वो ग्लानी का दुख सहन नहीं कर सकता। अगर महिमा ही स्वीकार करेंगे, अरे मेरी मैंने करता हूं मैं करता हूं, तो कोई ग्लानी करेगा सहन नहीं होगा। इसीलिए बाबा कहते हैं महिमा भी तेरी ग्लानी भी तेरी। कई कई बार हम लोग मधुबन से जाते हैं कई सेंटर पर, तो कई लोग यज्ञ के लिए पैसा देते हैं, वहां बहुत अच्छा स्वागत होता है। तो कभी कभी अगर ये लगे कि मेरा स्वागत हो रहा है, हमारा नहीं हो रहा है, हम कौन है, मधुबन निवासी है, हमारे साथ में बाबा है। इसीलिए बाबा के कारण मधुबन हम स्थान में रहते, इसीलिए मतवाए। बाकी तो अगर ऐसे यहां ना रहते, समर्पित ना होते, तो कौन पूछने वाला था। इसीलिए नहीं, बाबा की महिमा हो रहा है, हमारा कुछ भी नहीं हो रहा। तो जितना ऐसा रहेंगे हम निर्माण, उतना हम हल्के रह सकेंगे, भारी नहीं बनेंगे। इसीलिए बाबा कहते बच्चे ये अभिमान देखो, चेक करो कहीं मेरे अंदर अभिमान तो बढ़ तो नहीं रहा है। तो इसीलिए अभिमान से दूर रहने के लिए कोई भी कला को, विशेषता को क्या समझो, ये बाबा की देन है, मेरा कुछ भी नहीं है। तो निरंकारी स्थिति से ही हम समस्याओं का समाधान कर सकेंगे, कारणों का निवारण कर सकेंगे, सहनशील बन सकेंगे। चलो 2 मिनट बात चल रही थी कि हमें अपने जीवन के कारणों को निवारण करना है, समस्याओं को समाधान के रूप में बदलना है, तो हमें निरहंकारी बनने का पुरुषार्थ करना है। मय दो प्रकार के होते हैं, एक होता असली मय, दूसरे होते हैं नकली मय। असली मय है मैं आत्मा। जितना मैं असली मय के स्वरूप में रहेंगे उतना ये नकली मय जो भी मुकोटे हैं, जो कला है विशेषता है, उसका भान नहीं रहेगा। इसलिए सवेरे सवेरे जिन्होंने असली मय को ताकत दिया, सवेरे के अमृत वाला योग से, क्लास के पहले योग से, मुरली को ध्यान से सुनेंगे तो आत्मा को ताकत मिलने से, तो नकली मय ये अभिमान नहीं आएगा। फिर वो कारण तो आएंगे लेकिन उसको पता भी नहीं चलेगा, कारण का निवारण कर देगा, वो समस्याओं का समाधान करेगा, उसके जीवन में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। अगर थोड़ा ये तीन चीजों की कमी है, सवेरे सवेरे असली मय को ताकत नहीं मिलेगी तो सारा दिन तो नकली मय फिर जागृत हो जाएंगे, उसे टकराव शुरू हो जाएंगे, इसे मैं अभिमान आएगा, उसे कारण लगेंगे। इसलिए बाबा कहते बच्चे, समस्या का समाधान करने के लिए, कारणों का निवारण करने के लिए अभिमान से मुक्त बनो। दूसरी बात है, समस्याओं का समाधान करना है, कारण का निवारण करना है, तो स्वयं को परिवर्तन करना है। स्वयं को परिवर्तन का आधार है स्वराज्य अधिकारी स्थिति। स्वराज्य अधिकारी कारण उसको लगते हैं जो इंद्रियों के वश में है, उसके जीवन में कारण आते हैं जो इंद्रियों के अधीन है। इसलिए एक एक इंद्रिया, कर्म इंद्रिय अगर हमारी सशक्त है वो कारणों का निवारण कर सकता है। जो योग्य है वही मुझे देखना है, जो योग्य है वही सुनना है, जो योग्य है वही बोलना है। जितना स्वराज्याधिकारी स्थिति है उतना हम हल्के बन सकेंगे। हमको जो भारी बनाने की कारण है वो है इंद्रियां। कर्म इंद्रियां क्या करते हैं, राजा को गलत इंफॉर्मेशन दे देती हैं। तो देखो फलाने ने, वो गलत इंफॉर्मेशन देंगे तो उनका काम है कि वहां से उसको भगाना। लेकिन निगेटिव बातें आत्मा तक जब जाती हैं, वास्तव में कान हमारी आत्मा की रक्षा के लिए है, निगेटिव से बचाने के लिए है। लेकिन कान क्या करता है, निगेटिव बातों को पहुंचा देता है, आंखें निगेटिव बातों को पहुंचा देती हैं, मुख निगेटिव बातों को दे देता है, पांव भी निगेटिव की तरफ लेके जाता है, मन भी निगेटिव सोच लेता है, बुद्धि भी निगेटिव निर्णय ले लेती है, निगेटिव का सहारा ले लेती है, और उसके कारण समस्या और प्रॉब्लम्स है। इसीलिए ब्रह्मा बाबा ने, वैसे तो 18 जनवरी हमें ये भी याद दिलाते हैं, ब्रह्मा बाप समान बनना, अर्थात ब्रह्मा बाबा ने रोज अपने इंद्रियों का दरबार लगाया। वैसे हम अपने इंद्रियों को दरबार लगा करके एक एक इंद्रियों को सशक्त बनाना, तब हमारे में परिवर्तन आएगा। जब हमारे में परिवर्तन आएगा तो सहज कारणों का निवारण और समस्याओं का समाधान। समस्याओं का कारण है इंद्रियों की अधीनता, और जिसको इंद्रियां चलाती हैं वो आगे नहीं बढ़ सकता, वो हल्का नहीं बन सकता। आज इंद्रियों ने में हमें कान ने गलत सुन करके, आंखों ने गलत देख करके, इंद्रियों ने हमें क्या किया, अभी हमको इंद्रियों को चलाना है, जो ईश्वरीय मत है उस प्रमाण चलाना है, इसके लिए ऑर्डर देनी है। हे आंखें तुमने अगर अकल ये व्यर्थ क्यों देखा, हे कान तुमने व्यर्थ क्यों सुना, तुम हे मुख तुमने व्यर्थ क्यों बोला। ऐसे रोज चेक करो कौन सी कर्मेंद्रिय हमको धोखा देती है जिसके कारण आना शुरू हो जाता है, और वही कारणों का निवारण कर सकता है क्योंकि सामने वाला तो बदलने वाला नहीं है। इसीलिए बाबा कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, अपने घर को सुधारो। घर मतलब लौकिक घर की बात नहीं, ये शरीर रूपी घर को सुधारो, इसको एक एक इंद्रियों को अपने ईश्वरीय नियम प्रमाण चलाओ। पानी नौका अगर पानी के ऊपर से जाती है तो पार कराती है, अगर नौका को छेद होगा उसके अंदर पानी आएगा तो डुबा देता है। जो इंद्रियों को चलाता है वो पार हो जाता है, जिसको इंद्रिया चलाते वो डूब जाता है। बाबा ने ये पुरुषार्थ किया, बाबा ने रोज अपने इंद्रियों का दरबार लगाया, स्वराज्याधिकारी बने, इसीलिए बाबा फरिश्ता बने, सबके प्रिय बने। बाबा ने कोई कारण नहीं लगाया, इसलिए हमें भी बाप समान बनने के लिए, हल्का बनने के लिए रोज इंद्रियों का दरबार लगाना है, उनसे बातें करनी है। हम औरों से तो फोन से दूर दूर तक बात करते हैं, सबसे बात करते हैं, लेकिन कभी कर्मेंद्र से बात नहीं किया। उनको कभी अच्छा काम करते हैं, मुरली सुनते हैं तो उनको शाबाश भी दो, वाह कान बहुत अच्छा तुमने बड़ा सहयोग दिया, बहुत अच्छी मुरली सुनी, हे आंखें तुमने भी बहुत अच्छा ये किया, अच्छा यू करते समय अच्छा है तुम बंद नहीं हुए थे, इसीलिए धन्यवाद दो। अगर बंद होते तो उसे बात करो, हे आंखें शिव बाबा दृष्टि दे रहा था तो उस समय तुम बंद क्यों हो गए बताओ, इतना अच्छा बाबा को देखने के लिए तुम बंद क्यों हो जाते हैं। इसलिए कभी कभी पांव क्या करता है, पर चिंतन करने के लिए लेके जाता है, पांव उधर ही लेके जाएगा तो पर चिंतन मुख ने किया, कान ने सुना, लेकिन आधा पाप किसके ऊपर चढ़ा, पांव के ऊपर, क्योंकि पांव ने क्या किया वहां लेके गया। तो इसलिए उनसे बातें करनी, एक एक कर्मेंद्र से अगर बातें करेंगे उनको फिर दोबारा सजा भी दो, समझो मुख ने कुछ ऐसा किया तो उसको मौन में रखो दो तीन घंटा चार पांच घंटा। तो एक एक इंद्रियों पर जो शासन करता है वो कारणों का निवारण कर सकता है, समस्याओं का समाधान कर सकता है। इसलिए स्वराज्य अधिकारी स्थिति, इसे हम राजा बनेंगे। तीसरी चीज है, पहली चीज बताए अभिमान, दूसरा बताया स्वराज्य अधिकारी स्थिति, तीसरी चीजें कारणों का निवारण करना है, समस्याओं का समाधान करना है। इसलिए अपने पुराने संस्कारों को विदाई दो, पुराने संस्कार, पुराने जो भी हमें हमारे संस्कार है वो संस्कार ही हमें क्या करते हैं, जिसको बाबा ने कहा कि स्वभाव संस्कार को बदलो, पुराने स्वभाव संस्कार ही हमें क्या करते हैं कारण निकाल लेते। तो पुराने संस्कार चेक करना है कि मेरे अंदर पुराने संस्कार कौन से हैं, और पुराने संस्कार के ऊपर जीत प्राप्त करने के लिए, वास्तव में संस्कार तो हमारे परिवर्तन नहीं होते, संस्कार दब जाते हैं। जब हम ज्ञान योग अच्छी तरह करते हैं, योग अच्छी तरह लगाते हैं, तो संस्कार क्या हो जाते हैं, दब जाते हैं। थोड़ा सा ज्ञान के ऊपर योग के ऊपर अटेंशन नहीं आए तो संस्कार अंदर से उभर आते हैं। इसलिए संस्कारों को, पुराने संस्कारों को मर्ज रखने के लिए ज्ञान योग की तरफ अटेंशन, क्योंकि आत्मा को सुख चाहिए। जब हम ज्ञान योग से सुख अच्छी तरह लेते हैं तो संस्कार क्या हो जाएंगे, मर्ज रूप में रहेंगे। थोड़ा सा ज्ञान योग नहीं करते सुख के लिए, फिर क्षणिक सुख के लिए संस्कार बाहर आते हैं। तो संस्कारों को विदाई देने के लिए, कारणों का निवारण करने के लिए हमें रोज तपस्या की तरफ ध्यान देना है, साधना की तरफ ध्यान देना, साधना के द्वारा सुख लेना है। जिसको बाबा भी कहते बच्चे ज्वाला स्वरूप योग से अपने पुराने संस्कारों के जो जर्मस है अंदर, वो जर्मस को नष्ट करो, शिवाय योग से वो जर्मस नष्ट नहीं होंगे। जैसे भुना हुआ बीज कभी उगता नहीं है, अगर हमारे पुराने संस्कार जागृत हो रहे हैं इसका मतलब वो अंदर संस्कारों के जर्म से, अगर जितना भी आगे उसको जर्मस को ऐसे रखते रहेंगे, यही माया के प्रवेशता का गेट बनेगा। ये नहीं समझना कि विनाश के समय तो संस्कार ऐसे खत्म हो जाएंगे, उस समय तो और ही फोर्स बढ़ेगा। इसलिए अभी हमारे पास टाइम है तो हम तपस्या करके योग युक्त रह करके उस संस्कार को क्या करना है, विदाई देने हैं, तो जीवन के अंदर के कारण समस्या खत्म हो जाएंगी। पूरा संस्कार ही हमारे कारणों को लाते हैं, इसलिए संस्कारों का परिवर्तन, संस्कार ज्ञान योग की साधना के द्वारा क्या करना है, उसको मर्ज रूप में रखना है। चौथी बात है कारणों का निवारण करना है, समस्याओं का समाधान करना है, कर्मों के घुई गति को समझ करके चलना है। वास्तव में हमारे जीवन में बीच बीच में कुछ ऐसी बातें आती हैं, परिस्थिति आती हैं, वो आती है हमारे पिछले जन्मों के कई कर्मों के कारण भी। उसके लिए दोषी केवल वो व्यक्ति नहीं होता, दोषी हम भी होते हैं। हमारे भी पिछले जन्मों के कारण, हमारे आसपास के जितने भी लोग हैं, जो भी लोग हैं, ये लोग हमारे ही पिछले जन्मों के कर्मों को चुप्त करने वाले लोग हैं। कोई हमको देने के लिए आता है, कोई हमारे से लेने के लिए। अब जब कोई लेना देना शुरू हो जाता है तब हम कहते हैं देखो इसके कारण ऐसा हुआ, वो तो हम कभी रास्ते में इसके गए नहीं, मैंने इसको कुछ कहा नहीं, तो भी इसने ऐसा मेरे साथ क्यों किया। फिर समस्या सब शुरू हो जाते हैं, इसके कारण ऐसा हुआ, इसने ऐसा किया, फिर व्यर्थ की शुरू। लेकिन हो सकता है हम, मेरा भी पिछले जन्मों का इसका कोई हिसाब है, वो हिसाब किताब क्या हो रहा है, चुक्त हो रहा है। क्योंकि हम संबंध संपर्क में चाहे ब्राह्मण है चाहे अज्ञानी आत्मा है, पिछले जन्मों के कर्मों के कारण हमारा ये छोटी छोटी बातें आती हैं, समस्या आते हैं। इसलिए समस्याओं का समाधान करने के लिए, कारणों का निवारण करने के लिए इस कर्म गति को याद रखना है। मेरे पिछले जन्मों के कर्मों के कारण ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इसका कोई दोष नहीं। मन को समझाओ, ये मन तुम चुप रहो, तुम ज्यादा सोचो नहीं, ये आत्म दोष है। मेरा कोई पिछले जन्मों के इसका साथ हिसाब था, इसीलिए ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। बाकी हिसाब चुक तो हो जाएगा तो अपने आप ठीक हो जाएगा। मन को क्या दो, थोड़ी तसल्ली दो, नहीं तो मन कहता है नहीं नहीं मैंने तो ऐसे, हमने तो ऐसा किया ही नहीं, फिर भी ऐसा क्यों करता है इसने, और क्यों क्यों करते करते समस्या हो रही। पहले तो संकल्प में आएगा, एक ये भी निगेटिव है, एक बार संकल्प निगेटिव चले, फिर बोल निगेटिव, वृत्ति निगेटिव, भावना निगेटिव, दृष्टि निगेटिव, सब कुछ निगेटिव, फिर समस्या ही समस्या फिर दिखना शुरू हो जाते। इसलिए इस कर्म गति को हमें समझ करके चलना है, और जितना कर्म गति को समझ करके चलेंगे उतना कारणों का क्या हो जाएगा, निवारण, समस्याओं का समाधान। हमारे आसपास जो हिसाब किताब है उसको चुप्त करने के तीन तरीके, एक तो योग लगा करके करो, ये सहन करके चुप्त करो, या फिर धर्मराज की पुरी में डंडे खा करके करो। तो अच्छा है ना, अभी तो अगर किसी के हमारे संबंध में, वास्तव में संबंधों के जो टकराव हैं, ये हमारे पिछले जन्मों के हिसाब, उस हिसाब के कारण हमारा संबंधों में टकराव होता है, और इसको हम समस्या लेकर के, प्रकृति की समस्या आती है। क्यों, हमने इस कर्मेंद्र के द्वारा गलत जो काम किए हैं, इसके कारण प्रकृति हमें विघ्न रूप में आती है। तो प्रकृति का क्या दोष है, जितनी प्रकृति के द्वारा समस्या आएंगी तो मेरा हिसाब किताब चुकता है। और भविष्य में अभी कभी भी, बाबा क्यों कहते बच्चे स्वराज्याधिकारी बनो, क्योंकि स्वराज्याधिकारी बनेंगे तो प्रकृति का विघ्न आपका खत्म हो जाएगा। और अभी हमें आपस में भी कोई भी कांटे नहीं बोना है। अभी हमें जो कुछ हुआ, अभी संबंधों में भी बाबा कहते किसी को अगर दुख देंगे फिर दुखी होकर के मरना पड़ेगा। अभी दुख नहीं देना, जितना दिया वो अभी तो हम भोगत रहे इतना समय, अगर अभी बोएंगे तो उसका फिर और ही ज्यादा बढ़ेगा। इसलिए कारणों का निवारण करने के लिए, समस्याओं का समाधान करने के लिए अपने सारा दिन के कर्मों पर ध्यान देना है। इसलिए बाबा कहते चेक करो, कहीं मेरे से दुख तो किसी को नहीं मिल रहा है, मेरे से कोई दुखी तो नहीं हो रहे हैं। इसलिए कर्म गति, कितनी बातें हो गई, चार बातें हो गई। पहली बताई निरहंकारी बनना, अभिमान से मुक्त बनना, वो कारणों का निवारण करेगा, समस्याओं का समाधान। दूसरी बात कौन सी बताई, स्वराज्य अधिकारी स्थिति, एक एक इंद्रियों को अपने ईश्वरीय नियम मर्यादा प्रमाण चलाओ, उतना जीवन के अंदर के कारणों का निवारण, समस्याओं का समाधान होगा। तीसरी बात बताई अपने ही पुराने संस्कार, उस संस्कार को क्या करना है, परिवर्तन। चौथी बात बताई कर्मों की घुई गति को लेकर के, अगर कोई आती भी बातें हैं तो उसको कर्मों को समझ करके उसको चिंतन मंथन नहीं करना है, उसको खत्म करना है। पांचवी बात है अगर समस्याओं का समाधान करना है, कारणों का निवारण करना है, तो सदा ये मंत्र याद रखना, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी, मेरे जीवन की हर घटना में कल्याणकारी कल्याण है। ड्रामा कल्याणकारी है, परिस्थितियां कल्याणकारी है, बातें कल्याणकारी। ये तो कभी कभी हम कहते ये परिस्थिति मेरे सामने क्यों आई, ये ऐसी बातें क्यों आई। इसलिए नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, नो अपोजिशन, मन चुप। इसलिए कारणों का निवारण करने के लिए इस मंत्र को याद रखना, बाबा कल्याणकारी है, बाबा ने मेरा जो ड्रामा बनाया है, मेरे आसपास के जितने लोग हैं ये सब मेरा कल्याण करने वाले हैं, मेरा अकल्याण करने वाला कोई भी नहीं है। ड्रामा के ऊपर विश्वास, जिसका ड्रामा के ऊपर विश्वास है वो कभी भी कारण नहीं लगाएगा, उसके जीवन में समस्या नहीं होगी। जैसे कोई माँ बच्चों को दवाई पिलाती है, बच्चा अगर बीमार है, अगर दवाई कड़वी है तो बच्चा क्या करता है, उसको नहीं पीता, बार बार मुंह से निकलता है, माँ उसको क्या करते, जबरदस्ती उसको हाथ पकड़ करके भी दवाई जरूर पिलाएगी, क्योंकि उसको तंग नहीं कर रहे हैं, उसको लगता है अगर ये दवाई उसके पेट में जाएगी उसकी कई तकलीफें ठीक हो जाएगी। इसी तरह हमारे जीवन में भी कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कोई कड़वी बातें आ रहे हैं, ये ड्रामा कोई हमें तंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद और ही हमारे अंदर कुछ वैराग आएगा, कुछ नवीनता आएगी। इसीलिए ऐसी बातों को एडजस्ट करो, स्वीकार कर लो, और जो स्वीकार करता वो कारण नहीं लगाएगा, वो समाधान स्वरूप रहेगा। ड्रामा की हर सीन को स्वीकार करना, हर परिस्थिति को स्वीकार करना, वही समस्याओं का समाधान करता है, वो कारणों का निवारण करता है, वो क्वेश्चन भी नहीं करेगा। इसलिए ड्रामा को पसंद करना, मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा, इससे आत्मा सोमान में रह सकेंगी, स्वधर्म में टिक सकेंगी। और लास्ट की बात है, छठी बात है, अगर कारणों का निवारण करना है, समस्याओं का समाधान करना है, जीवन में आने वाली निगेटिव बात को क्या बना दो, पॉजिटिव। जितना निगेटिव बात को पॉजिटिव में परिवर्तन करेंगे उतना हल्के रहेंगे, उतना कारण नहीं लगाएंगे, उसके जीवन में समस्या भी नहीं होगी। और उसे जो निगेटिव को पॉजिटिव में डेवलप करता है, परिवर्तन करता है, उसके पास एक शक्ति आती है, और उस शक्ति का नाम है सहन शक्ति। और जिसके पास सहन शक्ति है, बाकी सारी शक्तियां भी उसको सहयोग करती हैं, क्योंकि सहन शक्ति है बड़ी बहन, और उसकी साथ में बाकी सात बहनें छोटी बहनें, जहां सहन शक्ति आई बाकी सात शक्ति आएगी, दैवी गुण शक्तियों के बच्चे हैं। जब सहन शक्ति है उसके साथ और चार गुना आए, दूसरी शक्ति आएगी उसके भी चार गुण। तो शक्तियां और गुण जिसके जीवन में है वो कारणों का निवारण करेगा, समस्याओं का समाधान, वो है मास्टर सर्वशक्तिवान, वो विजय बनेगा। इसलिए लेकिन सहन शक्ति आपको सहयोग कब देगी, जब आप चुप रहेंगे। अगर आप क्वेश्चन करना शुरू करेंगे ये क्यों हुआ, कारण लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, वो सहन शक्ति तो चली जाएगी। जब सहन शक्ति गई, धैर्यता समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, सारी शक्तियां गई और वहां समस्या ही समस्या है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। इसलिए निगेटिव को क्या बना दो, पॉजिटिव, जिसको बाबा कहते हैं पहाड़ को भी क्या बनाओ, राय बनाओ। पहाड़ वो कारणों का जो निवारण करता है वो पहाड़ भी राय बन जाता है, नहीं तो जो कारण लगाता है ये क्यों हुआ कैसे हुआ, जितना ज्यादा सोचेगा वो राय का भी क्या बन जाएगा, पहाड़, उसके जीवन में समस्या ही समस्या। सोच करके बातें बड़ी बन जाते हैं, जितना हम ज्यादा सोचते हैं उतना बातें बड़ी बन जाते हैं। इसलिए कारणों का निवारण करने के लिए, समस्याओं का समाधान करने के लिए निगेटिव बात को क्या बना दो, पॉजिटिव, परिस्थिति को पॉजिटिव बनाओ। लेकिन परिस्थिति को पॉजिटिव कौन बना सकता है, जिसके पास ज्ञान का अथाह खजाना है, जिसके पास ज्ञान के अथाह पॉइंट है, वो तुरंत निगेटिव को क्या बना देगा, पॉजिटिव, समस्याओं का समाधान करेगा। इसलिए अगर ये छह बातें आपके जीवन में साथ में हैं, तो आप सदा हल्के रहेंगे, आप फरिश्ता बन सकेंगे। और जो हल्का है तो समस्या उसके जीवन में कुछ भी नहीं, समाधान स्वरूप प्रसन्न चित है। तो पहली बात कौन सी बताएं, अभिमान से दूर। अभिमान क्यों नहीं करना, क्योंकि हमारे साथ में कौन है, बाबा। कहते एक व्यक्ति ने एक गधा पाला था, तो उसके पास उनका बहुत बड़ा मकान बन गया था। तो जब मकान बन गया तो उसको लगा अभी इतना सारा मकान बदलना है, दूसरे नए मकान में जाना है, तो अब इतना सामान कैसे लेके जाऊं। तो उसने क्या किया, उसके पास गधा था उसके ऊपर सारा डाल दिया और धीरे 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 सब सारा सामान शिफ्ट कर दिया, लेकिन एक मूर्ति बची थी। अब सोचता है मूर्ति कैसे लेके जाओ गधे के ऊपर, लोग क्या बोलेंगे। लेकिन लास्ट में सोचा है वैसे चलो कोई बात नहीं, इसके ऊपर ढक देता हूं। उसने क्या किया, कपड़ा ढक करके उसके ऊपर लेके गए। अब जाते जाते क्या हो गया, थोड़ा कपड़ा चलते चलते वो हट गया मूर्ति के ऊपर का, तो उसका सिर दिखना शुरू हो गया, सब सिर दिखना शुरू हो गया। तो लोगों ने क्या किया, वो उसको मूर्ति को देख करके नमस्ते करना शुरू किया। अब गधे को क्या लगता है, नमस्ते मुझे कर, वास्तव में गधे को नहीं कर रहे थे, किसको कर रहे थे, मूर्ति को। इसी तरह वास्तव में हमारे जीवन की जो भी कुछ, हमारा जो सम्मान है, हमारा जो भी है, किसके कारण है, हमारे साथ में बाबा है। इसलिए अगर हम बाबा के साथ नहीं होते तो हमें कौन पूछने वाला, कोई नहीं पूछता। इसलिए उस बैकबोन जो बाबा है, जो सात गुप्त में हेल्प कर रहे हैं, जैसे नारद का कभी क्या हुआ, नारद को हेल्प कर रहा था नारायण, लेकिन उसको भूल करके लगता है कि मैं विजय बन गया, अभिमान आ गया। इसीलिए बाबा कहते बच्चे कभी भी अभिमान में नहीं आओ, तो अभिमान के कारण फिर जीवन में प्रॉब्लम्स है, समस्या है। इसलिए समाधान स्वरूप बनने के लिए, निरंकारी बनने के लिए अभिमान से मुक्त। दूसरी बात कौन सी बताई, स्वराज्य अधिकारी स्थिति। जितना स्वराज्य अधिकारी स्थिति बन करके हर इंद्रियों की चेकिंग करेंगे तो कारणों का निवारण होगा। समस्या हमारा, समस्या पैदा करने वाले हमारे ही इंद्रिय हैं। तो जैसे ब्रह्मा बाबा ने स्वराज्य अधिकारी बन करके रोज अपनी इंद्रियों की चेकिंग किया, वैसे हमें चेकिंग करनी है ताकि हम हल्के रहेंगे, समस्याओं का समाधान होगा। तीसरी बात कौन सी बताएं, पुराने संस्कार। जितनी संस्कारों की चेकिंग करेंगे, रोज सवेरे असली मैं आत्मा मैं उसको ताकत देंगे, उतना हम पुराने संस्कार के वश नहीं होंगे। पुराने संस्कार के वश होने से समस्या और कारण। चौथी बात कौन सी बताई थी? कर्मों की घुई गति को याद करके हमें कुछ छोटी छोटी बातें आती हैं, ये हमारे पिछले जन्मों का अभी जरूर के हमने किया नहीं, अभी तो कुछ नहीं किया, किसी लिए हम हेल्प कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो फिर भी हमारे लिए कुछ गलत करता है, उल्टा करता है, तो वो तब हमारे कारण निकलते हैं। देखो इसके कारण ऐसा हो रहा है, देखो मैं इतना ये करते हूँ तो हमें, लेकिन नहीं, ये तो हमारा पिछले जन्म को कोई हिसाब भी होगा, उसके कारण भी ये समस्या आ रहे हैं, वो समाधान कर सकता है। कर्मों की घुई गति चौथी बात। पांचवी कौन सी बताई थी? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। मेरे जीवन में का अगर कोई प्रॉब्लम आया भी है तो मुझे अच्छाई की तरफ लेके जाने के लिए आए। आज तक के जितने भी प्रॉब्लम आए उन्होंने मुझे अच्छाई की तरफ लाया, अगर वो प्रॉब्लम ना होते तो यहां ना आते, तो इसलिए समस्या में अच्छाई की तरफ लेके जाती है, इसलिए कारण नहीं लगाना। और लास्ट की बात कौन सी बताई? छठी, निगेटिव को क्या बना दो? पॉजिटिव। जो निगेटिव को पॉजिटिव बनाता है वो समस्या का समाधान करता है। तो अगर ये पांच छह बातें याद रखेंगे, इससे हम सहज हल्के होकर के हल्के भी रहेंगे, फर्श स्थिति भी बनेगी, इसे हम सहज ही कारणों का निवारण करके समस्या का समाधान करके संगम युग के अनमोल समय को बचा करके कर्मयोगी बन सकेंगे, व्यर्थों से मुक्त बन सकेंगे। इसीलिए ये पुरुषार्थ करना है और अपनी स्थिति को सदा लाइट माइट बनाना है, फरिश्ता बनना है। ओम शांति।